लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवार ये आराधना विधि चिंतन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, वचन मानव के रूप में हमारे विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जिसके द्वारा हम अपने मन और दिल की गहराई में हो रही उथल पुथल स्थिति से दूसरों को वाकिफ करते हैं। हमारे मुख से उच्चरित वचन हमारी मन स्थिति को बतलाते हैं कि हमारे मन और हृदय की गहराई में क्या चल रहा है। इस भांति यदि हम अपने में आंतरिक रूप में शांत और खुश मिजाज हैं, तो हमारे मुख से खुशी और शांति के मधुर गीत निकलते हैं। वहीं यदि हम अपने में अशांत और किसी बात को लेकर दुखित और चिंतित हैं, तो हमारी ऐसी परिस्थिति में बोझिल और दर्द भरी बातें हमसे व्यक्त होती हैं। अतः हम किसी व्यक्ति के वचनों को सुनते हुए इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वह अपने जीवन में कैसी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, उस व्यक्ति का हाल क्या है। श्रोताओ, तृतीय सामान्य रविवार को माता कलिसा ने प्रभु वचन का सप्ताह घोषित किया है। आइए हम इस रविवार के आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार पाठ का श्रवण करते हुए अपने से यह पूछें और चिंतन करें कि ईश वचन आज हमारे लिए क्या संदेश लेकर आते हैं। ईश्वर के जीवनदायी वचनों को हम किस रूप में अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। यीशु ख्रीस्त के वचनों को सुनते हुए क्या हम तत्परता में उनका प्रत्युत्तर देते हैं।
योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई अंद्रेयस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने के बाद ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए।
श्रोताओ, ईश वचन हमें अपने जीवन में प्रभु के बुलावे को सुनने में मदद करें, जिससे हम उनका अनुसरण कर सकें जो हमें अपने कार्यों में हाथ बटाने हेतु निमंत्रण देते हैं।
मुझे तेरा बुलावा मिला।
श्रोताओ, नबी योना के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर के उस संदेश को प्रस्तुत करता है, जहां नबी योना ईश्वर के वचनों को घोषित करने हेतु नीनवे शहर भेजे जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि नबी योना शुरू में शहर नीनवे जाने को राजी नहीं होता, वह ईश्वर की आज्ञा को अनसुनी करते हुए दूर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि ईश्वर के वचनों को निनवे में घोषित करने के कार्य उसे जोखिम भरे लगते हैं। लेकिन ईश्वर अपने कार्यों को उनके द्वारा पूरा करने हेतु कैसे उस पर विपत्तियां भेजते और उसे अपनी राह में लाते हैं। वह 3 दिनों तक समुद्र में एक मछली के पेट में जीवित रहता और अंततः ईश्वर की आज्ञा अनुसार निनवे शहर को जाता है। इस भांति वह ईश्वर के वचनों को घोषित करते हुए 40 दिनों के अंदर विशाल निनवे शहर के विनाश की घोषणा करता है। वहां के निवासी नबी की बातों पर विश्वास करते और छोटे से लेकर बड़े तक, यहां तक कि राजा की आज्ञा के अनुसार सभी मवेशी भी उपवास और परहेज शुरू करते हैं। निनवे वासियों के पश्चातापी हृदय को देखकर ईश्वर उन्हें जो सजा देने की बात सोच रखी थी उसका परित्याग करते और शहर को विपत्तियों से बचाते हैं। श्रोताओं, ईश्वर के वचन शक्तिशाली और प्रभावकारी हैं और वे जो उनके वचनों को सुनते उन पर विश्वास करते हुए उनके अनुरूप कार्य करते हैं उन पर जीवन दाता ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है, जैसे कि निनवे वासियों के साथ हुआ। पापी ईश्वर के वचनों को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन लाते तो वे विपत्तियों और ईश्वर के न्याय से बचे रहते हैं, क्योंकि ईश्वर उन्हें भी अपने शर्तहीन प्रेम से प्रेम करते और उनकी भलाई चाहते हैं। श्रोताओं, मानव के लिए ईश्वर की योजना यही है कि हम सभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और ईश्वर में नवजीवन के भागीदार बने। मानव के लिए पिता ईश्वर की चाह यही है कि वे उनके बेटे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त में जीवन प्राप्त करें, न केवल जीवन बल्कि संपूर्ण जीवन, जिसे देने हेतु वे इस दुनिया में स्वयं मानव बनकर आते हैं। अतः हम अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार नहीं वरन ईश्वर की इच्छा और योजना अनुसार जीने हेतु बुलाए जाते हैं। श्रोताओं, ईश्वर की यह योजना हमारे लिए आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में प्रकट की गई है, जहां हमें अपने जीवन को तटस्थता में जीने का आह्वान किया गया है। विवाहित अपने जीवन को इस भांति जिए मानो उन्होंने विवाह नहीं किया हो, जो दुखी हैं मानो उन्हें दुख नहीं है, उसी तरह जो खुश हैं मानो वे अपनी खुशी में भी सामान्य स्थिति में हों, जो संपन्न हैं वे अपनी संपन्नता की नुमाइश नहीं करते हों। यह एक मनोभाव है जो हमें दुनिया की चीजों में आसक्त होने के बदले ईश्वर से अपने संबंध को मजबूत करने का निमंत्रण देता है, क्योंकि दुनिया की सारी चीजें जो हमारे पास हैं अपने में एक दिन समाप्त हो जाएंगी। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें ईश्वर के वचनों में विश्वास करने और उनके अनुरूप अपने जीवन में परिवर्तन लाने का आह्वान करता है। शब्द ने शरीर धारण किया और हमारे बीच निवास किया, अर्थात वचन स्वयं हमारे लिए यीशु ख्रिस्त हैं, जो पिता ईश्वर के द्वारा हमारे मुक्ति हेतु दुनिया में भेजे गए। वही मुक्तिदाता हमें अपने पिता के पास ले चलने हमें अपने पास बुलाते हैं, यह कहते हुए मेरे पीछे चले आओ। वे हमें अपने निकट, अपने साथ और अपने में रहने हेतु बुलाते हैं, जिससे हम उन्हें जाने, उन्हें समझें और उनके कार्यों में अपना हाथ बटाएं। यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हुए उन्हें कहते हैं, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। यह हमारा ध्यान उनके प्रेरित कार्य की ओर कराता है, अर्थात यीशु ख्रिस्त दुनिया में इसीलिए आए कि वे मनुष्यों को पकड़ सकें, विशेषकर जो पाप के कारण पिता के प्रेम से दूर भटक गए थे। वे पाप के कारण अंधकार में भटकी हुई अपने पिता की भेड़ों को खोजने और उन्हें पुनः एक प्रेममय भेड़ शाला में एकत्र करने हेतु आए। वे अपने पिता प्रदत्त इस कार्य की चर्चा करते हुए स्वयं कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूँ। श्रोताओं, यह हमें बेटे यीशु ख्रिस्त में पिता के प्रेम को दिखलाता है कि किस तरह पिता ईश्वर हमारी चिंता करते हैं। वे हमें अपने पापों से बाहर निकलने का आह्वान करते, जिसे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त हमारे लिए घोषित करते हैं, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आइए हम माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमें अपना हृदय खुला रखने में मदद करें, जिससे हम मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के वचनों को सुन सकें, उनका अनुसरण कर सकें, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जिससे हम भी यीशु ख्रीस्त के लिए मनुष्यों के मछुआरे बन सकें।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आने और देखने की मांग सभी प्रामाणिक मानव संचार की विधि है। यह 55वें विश्व संचार दिवस के लिए संत पापा फ्रांसिस का संदेश का विषय है, आओ और देखो। संत पापा ने पत्रकारों के संरक्षक संत फ्रांसिस डी सेल की स्मृति में आज जहां और जैसे हैं लोगों से मिलने की घोषणा की। कैथोलिक कलीसिया पत्रकारों के संरक्षक संत फ्रांसिस डी सेल्स का त्योहार 24 जनवरी को मनाती है। विश्व संचार दिवस के संदेश में वह आमंत्रण शामिल है जो फिलिप ने नथानाइल को संबोधित किया था, आओ और देखो। यह संत योहन के सुसमाचार से लिए गए पाठ में तर्क की पेशकश नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान शामिल है। संत पापा इस बात को रेखांकित करते हैं, 2000 से अधिक वर्षों से यह लोगों के मिलने की एक श्रृंखला है, जिसने ख्रिस्तियों के साहसिक कार्यों के आकर्षण का संचार किया है। दूसरी ओर संचार कभी भी व्यक्ति को पूरी तरह से देख और प्रकट नहीं कर सकता। प्रत्येक संचार अभिव्यक्ति को जो ईमानदार होना चाहता है, संत पापा आज के संचार आकाशगंगा, समाचार पत्रों से वेब तक तथा कलीसिया के साधारण प्रचार जैसे राजनीतिक या सामाजिक संचार को आने और देखने का निमंत्रण देते हैं। वास्तविक समाचार में प्रवेश करते हुए संत पापा टीवी और रेडियो समाचारों और वेबसाइट में, जो कि काफी हद तक समान है, में फोटोकॉपी समाचार पत्रों के जोखिम के खिलाफ चेतावनी देते हैं, जहां पूर्व पैक जानकारी की धारणा में सही जांच की जानकारी खो दी जाती है। जानकारियां जो चीजों की सच्चाई और लोगों के ठोस जीवन को बाधित करने के लिए कम से कम सक्षम है, और अब वे यह नहीं जानते कि सबसे गंभीर सामाजिक घटनाएं या समाज के आधार से मुक्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं को कैसे समझे। इसलिए संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रकाश संकट का कारण समाचारों में निर्मित जानकारी है, जो कंप्यूटर के सामने दूसरों के जूते को पहने बिना निर्मित समाचार है। संत पापा ने चेतावनी दी है कि दोहरे खातों को ध्यान में रखते हुए हर संकट की तरह केवल अमीरी दुनिया की आंखों के साथ इसे पुनरावृत्ति करने का जोखिम है। इस अर्थ में संत पापा फ्रांसिस का विचार सबसे वंचित आबादी के लिए टीके और चिकित्सा उपचार के सवाल पर जाता है। संत पापा कहते हैं कि एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के सबसे गरीब गांवों में चिकित्सा उपचार के बारे में हमें कौन बताएगा। यह एक ऐसा खतरा है जो दुनिया के धनी देशों को भी प्रभावित करता है, जहां बहुत सारे परिवार तेजी से गरीबी में फिसल गए, बड़े पैमाने पर छिपे हुए हैं। संत पापा ने कहा कि मानव स्वास्थ्य के अधिकार के सिद्धांत में पुष्टि की गई है कि सभी को स्वास्थ्य का समान अधिकार है, लेकिन गरीब हमेशा पीछे ही रहते हैं। संत पापा ने महामारी से उबरने के लिए सभी देशों में कोविड-19 के वैक्सीन के उचित वितरण पर जोर दिया। संत पापा ने दिल से सारे संचार ऑपरेटरों, पत्रकारों, कैमरामैन और संपादकों के जोखिम भरे कामों के लिए धन्यवाद दिया।
संत पापा फ्रांसिस ने बृहस्पतिवार को परम धम पीठ संत प्रकरण परिषद द्वारा धन्य घोषणा के लिए प्रस्तावित 8 अज्ञाप्तियों को अनुमोदन दिया, जिनमें से एक है जीवन के लिए गठित परम धम पीठ अकादमी के प्रथम अध्यक्ष एवं डाउन सिंड्रोम पर खोज करने वाले ईश सेवक जेरोम लेज्यून। प्रस्तावित 8 अज्ञाप्तियों में 6 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। उनके नाम इस प्रकार हैं: ईश सेवक जेरोम लेज्यून, जो एक फ्रांसीसी बाल रोग विशेषज्ञ और अनुवांशिकीविद थे, जिन्होंने डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों और उनके परिवार वालों के लिए संघर्ष किया। वे एक पति और 5 बच्चों के पिता थे। ईश सेवक जुवानी फोर्नासेनी की शहादत को मान्यता मिली है। वे एक धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। उनका जन्म 23 फरवरी 1915 को इटली के बेल्वेदेरे में हुआ था और विश्वास के कारण घृणा से 13 अक्टूबर 1944 को इटली के संत मार्टिनो दी काप्रा में उनकी हत्या हो गई। ईश सेवक मिकेले आर्कांजेलो मरिया अंतोनियो विंती के विरोचित सद्गुणों को मान्यता मिली है। वे एक धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। उनका जन्म 18 जनवरी 1893 को इटली के ग्रोते में हुआ था और निधन 17 अगस्त 1943 को हुआ। ईश सेवक रुजेरो मरिया कापुतो एक धर्म प्रांतीय पुरोहित थे। उनका जन्म 1 मई 1907 को इटली के बरलेत्ता में और निधन 15 जून 1980 को हुआ था। ईश सेविका येसु की मरिया जोसफिन पौत्र क्रूस और हमारे प्रभु येसु के दुख भोग की धम बहनों के धम संघ की संस्थापिका थी। उनका जन्म 2 सितंबर 1820 को इंग्लैंड में हुआ था और निधन 11 जनवरी 1864 को इंग्लैंड में ही हुआ। ईश सेवक संत्यागो मसरनाओ फर्नांडेस एक लोक धर्मी थे। उनका जन्म 10 दिसंबर 1805 को स्पेन के मैड्रिड में और निधन 14 दिसंबर 1882 को हुआ। ईश सेवक पस्क्वाले कांजी एक गुरुकुल छात्र थे। उनका जन्म 6 नवंबर 1914 को इटली में हुआ था और निधन 24 जनवरी 1930 को हुआ। और ईश सेवक अदेले बोनोलिस एक लोक धर्मी थे। उनका जन्म 14 अगस्त 1909 को इटली के मिलान में और निधन 11 अगस्त 1980 को हुआ था। 22 जनवरी को स्विस गार्ड ने अपनी स्थापना का 515वां वर्षगांठ मनाया। इसकी स्थापना संत पापा जूलियस द्वितीय ने की थी। विश्व की सबसे छोटी सेना के रूप में पहचाने जाने वाले स्विस गार्ड का अस्तित्व स्विस आर्मी फोर्स से अलग है, जिसको पोप के नेतृत्व में रोमन कैथोलिक कलीसिया ने अपने लिए किराए पर रखा है, जिनके लिए वे वेटिकन में निष्ठा की शपथ लेते हैं। परम धम पीठ के सुरक्षा बल के साथ स्विस गार्ड का कर्तव्य है वेटिकन के अंदर और बाहर पोप की सुरक्षा सुनिश्चित करना। उधर जीवन के लिए गठित परम धम पीठ अकादमी ने वैक्सीन राष्ट्रवाद से ऊपर उठने के महत्व पर जोर दिया है, जिससे कि सभी को वैक्सीन लेने का अवसर प्राप्त हो सके और कोविड-19 के खिलाफ लड़ने में कोई पीछे ना रहे। जीवन के लिए गठित परम धम पीठ अकादमी ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 वैक्सीन के उत्पादन एवं वितरण से उत्पन्न होने वाली गंभीर समस्याओं का सामना करते हुए पारदर्शिता एवं सहयोग के लिए उचित प्रणाली की पहचान करना एक अत्यावश्यकता बन गई है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।